नमस्ते दोस्तों, अब आप पाशुपत संप्रदाय नामक चैप्टर का वाचन विवेकानंद की आवाज में सुनेंगे। पाशुपत संप्रदाय। शैव धर्म के अंतर्गत पाशुपत संप्रदाय का विकास हुआ। पाशुपत मत का उल्लेख महाभारत में हुआ है, जिसका उपदेश ब्रह्मा के पुत्र भूतनाथ श्रीकंठ उमापति शिव ने शांत चित होकर दिया था। ऐसा लगता है पाशुपत मत का उदय महाभारत की रचना के बहुत पहले किसी समय हो गया था तथा इसका प्रवर्तक स्वयं शिव अथवा शिव नामक कोई मनुष्य था, जिसे कालांतर में शिव का अवतार मान लिया गया। पाशुपत मत का विकास क्रमशः हुआ तथा इसका उल्लेख पुराणों और अभिलेखों में मिलता है। वायु पुराण और लिंग पुराण के विवरणों के अनुसार पाशुपत मत का उद्भव लकुलीन अथवा लकुलिश नामक ब्रह्मचारी द्वारा हुआ था, जो शिव का अवतार था। जिस समय वासुदेव कृष्ण उत्तरी भारत में अपना धर्म प्रचार कर रहे थे, उस समय पश्चिम भारत के कायावरोहण नामक स्थान पर लकुलिश का जन्म हुआ था। वह शिव के 28वें और अंतिम अवतार थे। उपर्युक्त पुराणों की कथा के अनुसार युगों के 28वें प्रत्यावर्तन में जब कृष्ण द्वैपायन ने जन्म लिया था, तब महादेव ने शमशान में पड़े एक मृत शरीर में प्रवेश किया और लकुलीन नामक ब्रह्मचारी के रूप में अवतरण किया, जिनके कुशिक गर्ग मित्र और कौरूप्य नामक चार शिष्य हुए। अंततः वे पशुपत युगमय नियम नियत दृढ़ धर्मोपदेश करके रुद्र में प्रविष्ट हो गए। अतः पुराणों के अनुसार इस मत के प्रवर्तक लकुलीन थे। लकुलीन का अर्थ था लकुट या लगुड अथवा लकुल, कोष्ठ में लंगोटी धारण करने वाला। पशुपत संप्रदाय के लोग हाथ में लगुड कोष्ठ में दंड धारण करते हैं, जो एक प्रकार से शिव का प्रतीक होता है। कुषाण शासक होविस्क कोष्ठ में दूसरी सदी ईस्वी की मुद्रा पर इसी प्रकार का चित्र अंकित है, जो इस संप्रदाय के विषय में ज्ञान प्रदान करने वाला सर्वाधिक प्राचीन प्रमाण है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के मथुरा स्तंभ लेख में उल्लिखित है कि उदिताचार्य नामक एक पाशुपत अनुयायी ने उपमितेश्वर और कपिलेश्वर नामक दो लिंगों की स्थापना की थी। इस अभिलेख में यह भी विवृत है कि कुशिक के क्रमागत होने वाले शिष्यों में उदिताचार्य 10वें थे। अगर प्रत्येक शिष्य को 25 वर्ष के अंतर से रखा जाए तो कुशिक का समय 130 ईस्वी होगा। ऐसा लगता है कि कुषाण शासक होविस्क संभवतः कुशिक समकालीन और पशुपत मत से प्रभावित था। गुजरात के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि भटारक लकुलिश के रूप में शिव ने अवतार लिया था, जिनके चार शिष्य थे। कुशिक उनके पहले शिष्य थे। चार शिष्यों की सूचना वायु पुराण से भी प्राप्त होती है। पशुपत व्रत के विशेष चर्या के लिए लकुलिश का अवतार हुआ था। स्पष्ट है कि लकुलिश ने पाशुपत का प्रचार उत्तरी और पश्चिमी भारत में किया था और उनका समय पहली और दूसरी सदी के बीच था। लकुलिश की एक आकृति कश्मीर के पुराण दिध्यान मंदिर के तोरण द्वार पर उत्खनित है। लकुलिश पाशुपत के नाम से भी यह मत चला, जिसमें से मानव व्यंजक लकुलिश शब्द हट गया और देव व्यंजक पशुपति से बचा रह गया। यद्यपि उदयपुर के एक लिंग अभिलेख से पता चलता है कि शैव संप्रदाय लकुलिश के नाम से भी ख्यात था। इसमें इस संप्रदाय के प्रवर्तक और उनके उत्तराधिकारी कुशिक का भी उल्लेख है, जो गुप्तवंशी चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख के विवरण से बहुत कुछ मिलता है। बाण ने पाशुपत संप्रदाय को शैव धर्म के रूप में विवृत किया है, जिसकी अनुयायी अनेक अपने ललाट पर भस्म लगाते और रुद्राक्ष की माला लिए रहते थे। स्वान चुआंग ने लिखा है कि सिंध और अहिछत्र के लोग बौद्ध नहीं है, वे भस्म रमाने वाले पशुपत मत के मानने वाले हैं। चाहमान शासक विग्रह पाल के एक अभिलेख में पशुपत संप्रदाय का उल्लेख हुआ है, जिसके अनुसार सह मतावलंबी अल्लत ने एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, जो पाशुपत शिव का सत्यनिष्ठ भक्त था। कलचूरी शासक पाशुपत मत के अनुयायी थे, इसलिए उनके अभिलेखों में इसके उल्लेख मिलते हैं। अल्हड़ देवी के भेड़ाघाट अभिलेख में शिव मंदिर का संकेत है, जिसकी व्यवस्था लाट प्रदेश से आए हुए पाशुपत मत के अनुयायियों को सौंपी गई थी। एक अन्य चेदी अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक पाशुपत सन्यासी भाव द्वारा शिवालय का निर्माण करवाया गया था। कभी कभी शैव संघों और मठों के प्रधान पाशुपत आचार्य कहे जाते थे। भोजनगर के सोमेश्वर देव के मठ निवासी वाल्मीक पाशुपत आचार्य थे। ऊपर के उदाहरणों में पाशुपत संप्रदाय शैव संप्रदाय का पर्यायवाची लगता है, किंतु शैव धर्म के सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार दोनों में अंतर है। गुणरत्न ने न्यायिकों को शैव और वैशेषिकों को पाशुपत कहा है। पाशुपत संप्रदाय का प्रवर्तक लकुलिश या नकुलिश नामक ऐतिहासिक मनुष्य था, जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। वैसे पाशुपत साहित्य अपूर्ण और अधूरा मिलता है। सर्वदर्शन संग्रह में नकुलिश पाशुपत के नाम से विवृत है। भासर्वस्य कृत गणकारिका और महेश्वर रचित पाशुपत सूत्र में इस मत के विषय में विस्तृत चर्चा मिलती है। यद्यपि वायुपुराण में पाशुपत मत के सिद्धांतों और उसके योग पक्ष पर विचार किया गया है तथा साधना और उपासना का भी संकेत किया गया है। पाशुपत सूत्रों के भाष्यकार कौंडिल्य ने पाशुपत चर्याओं को ब्राह्मण विरोधी बताया है। ऐसा लगता है कि पाशुपत संप्रदाय जाति पाति के भेद को नहीं मानता था, वह मानवता का सम्यक विकास चाहता था। पहली सदी ईस्वी के समय इस संप्रदाय का उत्तर भारत में विशेष उत्कर्ष हुआ। शकों पहलवों और कुषाणों के काल में इस संप्रदाय को प्रश्रय मिला। पाशुपत संप्रदाय का सिद्धांत। पाशुपत मतानुयायी दैत्यवादी हैं। उन्होंने पाशुपत सिद्धांत के अंतर्गत पांच पदार्थों को स्वीकार किया है। पहला कार्य, दूसरा कारण, तीसरा योग, चौथा विधि और पांचवा दुखांत। इसी विचारानुसार शंकर ने पाशुपत संप्रदाय के पांच सिद्धांत निर्दिष्ट किए, जिन्हें परवर्ती भाष्यकारों ने अपने विचारानुसार प्रतिपादित किया। कार्य, पहला कार्य उसे कहा गया जिसमें स्वतंत्र शक्ति नहीं है, यह तीन प्रकार का माना गया, विद्या, अविद्या और पशु। कार्य के अंतर्गत ही जीव और जड़ होते हैं। जीव पशु का गुण विद्या है, जो दो प्रकार की है, बोध और अबोध। जीव की बोध स्वभावशाली विद्याचित है तथा धर्म और अधर्म से मुक्त विद्या अबोध है। चेतन के अधीन होते हुए स्वयं अचेतन पदार्थ कला है, जिसके दो भेद होते हैं, कार्य रूपा और कारण रूपा। कोष्ठ में इंद्रिय। कार्य युक्त कला में पृथ्वी यदि आदि पांच तत्व तथा गंधादि पांच गुण विद्यमान है। कारण युक्त कला में 13 इंद्रियों, कोष्ठ में 5 ज्ञानेन्द्रियों, 5 कर्मेंद्रियों तथा बुद्धि, अहंकार और मन का अंतर्भाव है। पशु पाशों से आबद्ध है, इसलिए उसमें पशुत्व है। पशु के भी दो प्रकार हैं, एक सांजन और दूसरा निरंजन। शरीर इंद्रिय की कलाओं से संबंध होने के कारण मलयुक्त पशु सांजन है तथा जो पशु इससे आबद्ध न होकर मुक्त और निर्मल है वह निरंजन है। दूसरा कारण। कारण वह तत्व है जो समस्त वस्तुओं की सृष्टि और संहार के साथ अनुग्रह प्रदान करता है। वही परमात्मा है, परमेश्वर है, जो अपना अपरिमित ज्ञान और प्रभु शक्ति जीवों को प्रत्यक्ष कराता है और उनका पोषण करता है, इसलिए उसे पति की संज्ञा दी गई। पति के रूप में वह ज्ञान और क्रिया की शक्तियों से संपन्न होता है और पूर्णतः संपन्न होते हुए वह आधकर्ता और ऐश्वर्यवान के रूप में रहता है। उसमें शक्ति और कर्तृत्व का तादात्म्य रहता है तथा वह स्वतंत्र कर्ता कहा जाता है। तीसरा योग। योग वह है जिसमें चित्त के माध्यम से आत्मा का परमात्मा से संबंध स्थापित होता है। योग के दो प्रकार होते हैं, पहला क्रियात्मक, कोष्ठ में जप तप ध्यान आदि, और दूसरा अक्रियात्मक, कोष्ठ में क्रिया की निवृत्ति, अनुभव और तत्व ज्ञान। चौथा विधि वह साधक व्यापार है जिसमें जीव को महेश्वर की प्राप्ति होती है। पहला मुख्य और दूसरा गौण, इसके दो भेद निर्दिष्ट हैं। मुख्य विधि में धर्म का साक्षात्कारण है, जिसे चार्या भी कहते हैं। इस मुख्य विधि के भी दो प्रकार हैं, व्रत और द्वार। भस्म स्नान, भस्म शयन, जप, उपहार और प्रदक्षिणा नामक कार्य पंचविधि व्रत कहे जाते हैं। इसमें उपहार अथवा नियम की 6 श्रेणियां निर्दिष्ट है। पहला हसित, दूसरा गीत, तीसरा नृत्य, चौथा हुडुडुकार, पांचवा नमस्कार और छठवा जप्य, जिसमें साधक क्रमशः हंसता, गाता, नाचता, बैल के समान शब्द करता, नमस्कार और जप करता है। द्वार के 6 प्रकार हैं। पहला ग्राथन, कोष्ठ में असुप्त व्यक्ति का सुप्त मनुष्य की तरह चेष्टा करना। दूसरा स्पंदन, कोष्ठ में निःशक्त के रूप में अंगों का कंपन। तीसरा मंदन, कोष्ठ में लंगड़ाते हुए चलना। चौथा श्रृंगारण, कोष्ठ में किसी कामनी को देखकर कामुक जैसी चेष्टा करना। पांचवा अवितत्वकरण, कोष्ठ में विवेकहीन होकर निंदित कार्य करना। छठवा अवितत् भाषण, कोष्ठ में अज्ञान की बातें करना। गौण विधि में अनुस्नान, कोष्ठ में पूजा के उपरांत भस्म स्नान। भैक्ष्य, उच्छिष्ट, निर्माल्य और लिंग धारण किया जाता है। पांचवा दुखांत का अभिप्राय है, दुख का अंत अर्थात दुखों से अत्यंत निवृत्ति रूपा मुक्ति। दोषों, कोष्ठ में मलों के कारण जीव बंधन में रहता है, जो 5 प्रकार के हैं। पहली मिथ्या ज्ञान, दूसरा अधर्म, तीसरा शक्ति हेतु, कोष्ठ में विषयों में आसक्ति और संपर्क। चौथा च्युति, कोष्ठ में रुद्रत्व से चित्त का च्युत होना। और पांचवा पशुत्व, कोष्ठ में अल्पज्ञता आदि पशुत्व के उत्पादक धर्म। योग और विधि से मन को स्थित करते हैं तथा मोक्ष लाभ के लिए पंच विधि उपायों में से प्रपति का साधन बनाते हैं, जिसके कारण शिव का चित्त साधकों के प्रति दयार्द और कोमल हो जाता है। फलस्वरूप शिव के अनुग्रह से जीव को मुक्ति मिलती है। अतः दुखांत के 2 प्रकार है। पहला अनात्मक, कोष्ठ में दुखों की मात्र निवृत्ति, और दूसरा सात्मक, कोष्ठ में ज्ञान और कर्म की शक्ति से परमैश्वर्य की प्राप्ति। ज्ञान शक्ति के 5 भेद हैं। पहला दर्शन, कोष्ठ में सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट वस्तुओं का ज्ञान। दूसरा मनन, कोष्ठ में समस्त चिंतित विषयों का ज्ञान। तीसरा श्रवण, कोष्ठ में भली भांति शब्दों का ज्ञान। इसी प्रकार क्रिया शक्ति भी 3 प्रकार की कही गई, जो मुक्त पुरुषों में अद्भुत रूप उद्भूत करती है। पहला मनोजवित्त, कोष्ठ में तुरंत कार्य करना। दूसरा कामरूपित्व, कोष्ठ में इच्छानुसार विविध रूप धारण करना। तथा तीसरा विकरण धर्मित्व, कोष्ठ में इंद्रिय व्यापार के अवरुद्ध हो जाने पर भी ऐश्वर्यशाली होना। उपर्युक्त सिद्धांतों के आधार पर ही पाशुपत संप्रदाय का विकास हुआ तथा उनका वैशिष्ट्य और साधन तत्व शैव धर्म के अंतर्गत गृहित हुआ। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित नेपाल स्थित काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर है, जहां आज भी दर्शनार्थियों और अनुयायियों की भीड़ लगी रहती है, जिनमें भारत के विभिन्न भागों के यात्री भी होते हैं। तीसरा कपालिक संप्रदाय, कपालिकों के इष्ट देव भैरव हैं, जो शंकर के अवतार माने जाते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी भैरव को ही सर्जन और संहार करने वाला मानते हैं। ये लोग सुरापान करते हैं और समाज में घृणित पदार्थ ग्रहण करते हैं। इनका विश्वास है कि ऐसा करने से इनकी ज्ञान शक्ति तीक्ष्ण होती है। साथ ही ये लोग सर्वदा भैरवी से अलिंगित रहने का समर्थन करते हैं। शंकर दिग्विजय में उल्लिखित है कि उज्जैनी में माधव ने शंकराचार्य को कपालिकों से मिलाया। कपालिकों का आचार्य जब आचार्य शंकर से मिला, तब उसका शरीर शमशान भस्म से पुता हुआ था। उसके एक हाथ में नर कपाल और दूसरे हाथ में लौह यष्टि थी। सह होने के कारण आचार्य शंकर के शरीर पर भी भस्म की रेखाएं थी। अतः उस कपालिक आचार्य ने शंकर से कहा, तुम्हारी काया पर भी भस्म पूर्णतः ठीक है, किंतु कपाल पात्र के स्थान पर तुमने यह अपवित्र मृत पात्र क्यों लिया है? क्यों नहीं तुम कपाली भैरवी की पूजा करते? सुरा और रक्त रंजित कपालों से पूजा किए बिना भैरव कैसे प्रसन्न होंगे? अतः इस उदाहरण से स्पष्ट है कि कपालिक संप्रदाय का अनुयायी तामसिक क्रियाओं का अनुसरण करके तथा उसके माध्यम से अपने उपास्थ देव और भैरव को प्रसन्न करता है। सिर पर जटाजूट, गले में रुद्राक्ष माला, शरीर पर शमशान भस्म, हाथ में नरकपाल धारण करना कपालिकों के प्रधान लक्षण है। उनका मत है कि 6 मुद्रिकाओं के प्रयोग से भागासन पर बैठकर परम ब्रह्म आत्मा का चिंतन करने से मुक्ति संभव है। उनकी 6 मुद्राएं हैं। पहली कंठिका, दूसरी रुचक, तीसरी कुंडक, चौथी शिखामणि, पांचवा भस्म और छठवा यज्ञोपवीत। संप्रदाय के सिद्धांत के अनुसार इन मुद्रिकाओं को धारण करने से मनुष्य आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। कुर्म पुराण में उल्लिखित है कि शैव धर्म के अंतर्गत कपालिक संप्रदाय प्रमुख था। कपालिकों का चरित्र और स्वभाव अत्यंत क्रूर और भयंकर होता था। भवभूत ने मालवी माधक नामक नाटक में कपालिकों का उल्लेख किया है, जिनका प्रधान पीठस्थान श्रीशैल था। उनकी निरसंसता और क्रूरता का चित्रण नाटककार ने सजीवता के साथ किया है। नाटक की नायिका मालती को कपालों की माला पहने हुए कपाल कुंडला नामक स्त्री शमशान स्थित कराला चामुंडा की मूर्ति के सम्मुख ले जाकर उपस्थित करती है। वहां आचार्य अघोर घंट उसकी बलि देने वाले थे। राजस्थान से प्राप्त 2 अभिलेखों में भी कपालिकों का उल्लेख मिलता है, किंतु शैव धर्म के अंतर्गत यह संप्रदाय अत्यंत भयंकर और आसुर प्रवृत्ति का था तथा भैरव को सुरा और नर बलि का नैवेद्य प्रदान कर भैरवी से अलंगित होते हुए अपनी राक्षसी प्रवृत्ति व्यक्त करता था। चौथा कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय के अनुयायी कपालिकों के ही वर्ग के थे, किंतु वे उनसे भी अधिक अतिवादी और भयंकर प्रवृत्ति के थे। अतिमार्गी होने के कारण ही शिव पुराण में उन्हें महाव्रतधर कहा गया है। नर कपाल में भोजन करना, जल पीना, सूरा पीना तथा नर शव का भस्म शरीर पर लगाना आदि कार्य उनकी अतिमार्गी प्रवृत्ति स्पष्ट करते हैं। पांचवा वीर शैव अथवा लिंगायत संप्रदाय। दक्षिण भारत में शैव धर्म का अत्यधिक प्रचार और प्रसार हुआ। इसके अंतर्गत वीर शैव संप्रदाय का तीव्रता से विकास हुआ। वीर शैव संप्रदाय के अनुयायी लिंगायत या जंगम भी कहे गए। वर्ण व्यवस्था के प्रतिकूल ये लोग आचरण करते हैं तथा शिवलिंग को चांदी के संपुट में रखकर हर समय अपने गले में लटकाए रहते हैं। बसव पुराण के अनुसार इस संप्रदाय का प्रवर्तन अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बसव कोष्ठ में वश वर्ण नामक ब्राह्मण ने किया था, जो कलचूरी शासक विजय का मंत्री था। वीर शैवों का यह मत है कि भिन्न भिन्न समयों में 5 महापुरुषों ने इस धर्म का उपदेश दिया था। उनके नाम है रेणुकाचार्य, दारुकाचार्य, इकोरामाचार्य, पंडिताराध्य और विश्वाराध्य। इन आचार्यों का शिव के विशिष्ट लिंगों से जन्म हुआ था। उन लोगों ने रंभापुरी कोष्ठ में मैसूर, उज्जैन, उखीमठ कोष्ठ में केदारनाथ, श्रीशैल और काशी में अपने विशिष्ट सिंहासनों की स्थापना की। श्रीकर भाष्य में श्रीपति ने इस संप्रदाय के सिद्धांतों का उपनिषद से निःसृत बताया है। लिंगायत संप्रदाय का अधिकतर साहित्य कन्नड़ भाषा में है। इनका दर्शन और सिद्धांत निम्नलिखित आधार पर विकसित हुआ है। पहला, कर्म की प्रधानता इस संप्रदाय की विशेषता है। यह कर्म निष्काम कर्म है, जिसके प्रतिफल की अपेक्षा नहीं है, इसलिए इस मार्ग को वीर धर्म और वीर मार्ग की संज्ञा दी गई। दूसरा, शिव परम तत्व है, जो पूर्णतः अहंता और स्वतंत्र है। उसकी परिभाषा स्थल शब्द से की जाती है, इसलिए कि वह स्थित है, शिव में लय स्थिर कर चुका है, अतः वह परम शिव स्थल है। शिव में ही उपास्य और उपासक के बीच घृणा करने की शक्ति है, जो अवसर पड़ने पर विभेदित हो जाता है और स्थल के 2 भेद हो जाते हैं, एक अंगस्थल और दूसरा लिंगस्थल। लिंगस्थल उपास्य और शिव रूप है तथा अंगस्थल उपासक और जीव। इसी तरह लिंग कोष्ठ में शिव की शक्ति का नाम कला है और अंग कोष्ठ में जीव की शक्ति का नाम भक्ति। कला शक्ति प्रवृत्ति है और भक्ति शक्ति निवृत्ति। सृष्टि शिव से जन्मती तथा भक्ति के कारण सृष्टि का शिव से तदात्म्य होता है। तीसरा, लिंग के तीन भेद हैं। पहला भावलिंग, दूसरा प्राणलिंग और तीसरा इष्टलिंग। भावलिंग कला विहीन सद्रूप काल और दिक से अपरिच्छिन्न तथा परात्मर है, इसका साक्षात श्रद्धा से होता है। प्राणलिंग कलाहीन और कलायुक्त चाक्षुष है। इन तीनों को क्रमशः सत, चित और आनंद कहा जा सकता है। परम तत्व भावलिंग है, सूक्ष्म प्राणलिंग है और स्थूल इष्टलिंग। चौथा, अंग स्थल का व्यवहार जीव के लिए किया गया जो तीन प्रकार का है। पहला यो गांग कोष्ठ में जो जीव शक्ति से एक ही भाव स्थापित करके सोते जागते आनंद प्राप्त करता है। दूसरा भोगांग कोष्ठ में शिव के साथ जीव का आनंदोपभोग करना। और तीसरा त्यागांग कोष्ठ में क्षण भंगुर संसार का त्याग। लिंगायत संप्रदाय में कुछ लिंगी ब्राह्मण भी हैं। लिंग धारण करने वाले लोग उनके अनुयायी हैं। लिंग ब्राह्मणों के दो वर्ग हैं, पहला आचार्य और दूसरा पंचम। कालांतर में लिंगायतों की चार श्रेणियां हो गई, जंगम, सिलवंत, वणिक और पंचमशाली। छठवीं हेडलाइन है कश्मीरी शैव सिद्धांत अथवा त्रिक दर्शन। कश्मीर में जिस शैव मत का विकास हुआ वह अन्य शैव सिद्धांतों से कहीं अधिक उपयुक्त और मानवीय था तथा वह त्रिक दर्शन के नाम से जाना गया। इस कश्मीरी शैव दर्शन में पाशुपत, कपालिक और कालमुख के निंदनीय आचारों और गंदे व्यवहारों का अभाव है। मांस, मदिरा, मैथुन, खोपड़ी में आहार ग्रहण करना, शमशान की राख अपने शरीर पर मलना तथा मनुष्य और पशु की बलि चढ़ाना जैसे अविचारों की इसमें भर्त्सना की गई है। इस दर्शन में ज्ञान और ध्यान को परम ब्रह्मा की प्राप्ति का प्रधान आधार बनाया गया है। इसकी तीन शाखाएं हैं, पहला आगम शास्त्र, दूसरा स्पंदन शास्त्र और तीसरा प्रत्यभिज्ञा शास्त्र। त्रिक दर्शन के आगम शास्त्र के अंतर्गत सिद्धा नामक और मालिकी तीन तत्व हैं जो क्रमशः पशु, पति और पास कहे गए। स्पंद दर्शन की दो पृथक पृथक श्रेणियां हैं जिनमें आध्यात्मिक तत्वों का एक समान विवरण प्राप्त होता है, जिसमें शिव विश्व का स्वत्मैक्य रूप है, उसमें स्पंदन है तथा शिव और शक्ति तत्व का योग है। इस संयुक्तता से सादाख्य कोष्ठ मैं यह हूं तत्व का निर्माण होता है। इसमें ऐश्वर्य कोष्ठ में यह मैं हूं का आविर्भाव होता है। स्पंद दर्शन शाखा के पहले दार्शनिक वासुगुप्त थे और उनके शिष्य कल्लट कोष्ठ में 9वीं सदी। इस संप्रदाय के दो प्रधान ग्रंथ हैं, पहला शिव सूत्रम और दूसरा स्वंदकारिता। प्रत्यभिज्ञा दर्शन के प्रवर्तक सोमानंद थे जिनकी रचना का नाम शिव दृष्टि है। उनके प्रमुख शिष्य का नाम उदयाकर था तथा प्रशिष्य का नाम अभिनव गुप्त कोष्ठ में 10वीं सदी का उत्तरार्ध। प्रत्यभिज्ञा दर्शन का मूल आशय था कि सब कुछ शिव है, शिव की ज्योति से हम सब उद्भासित होते हैं, सब शिवमय है। जब यह ज्ञात कराया जाता है कि हम शिव हैं तब हम अपने को शिव समझने लगते हैं, यही स्थिति प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। कश्मीरी शैव सिद्धांत में निम्नलिखित तत्व आते हैं, परम तत्व अदय परमेश्वर है जो शिव और शक्ति का तथा कामेश्वर और कामेश्वरी का समन्वित रूप है। वह चैतन्य, परा, संवित, अनुत्तर, परमेश्वर, स्पंद और परम शिव है जो उसके पृथक पृथक अभिधान है। उसके दो तत्व हैं, विश्वात्मक और विश्वोत्तीर्ण। विश्वात्मक रूप में वह विश्व में सर्वत्र है तथा सृष्टि का अपने आधार पर उन्मीलन करता है। उसकी पांच शक्तियां हैं, चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, जिनमें समस्त सृष्टि का स्पंदन है। जगत में उसी का रूप है। द्वैत भावना काल्पनिक है तथा अद्वैत भावना वास्तविक। परमेश्वर के हृदय में सृष्टि की इच्छा होते ही उसके दो रूप हो जाते हैं, शिव रूप और भक्ति रूप। दोनों का एक दूसरे से अटूट संबंध है। शिव को अपने प्रकाश का ज्ञान भक्ति के कारण होता है और सृष्टि होती है। कला तत्व के कारण जीव सर्वकृतित्व से कुछ संकुचित हो जाता है। अतः विद्या के कारण उसका संकोचक तत्व राग के माध्यम से विषयों के प्रति आकृष्ट होता है। काल और नियति के आवरण से हटने पर जीव की स्वाभाविकता होती है। वस्तुतः प्रत्यभिज्ञा का साधन मार्ग विशिष्ट उपासना का मार्ग है, जिसमें भक्ति और ज्ञान का अपूर्व सामंजस्य है। अगर देखा जाए तो जीव ही वास्तविक रूप में शिव है, उसमें ज्ञान और भक्ति की सत्ता है। आवरण के कारण वास्तविकता ओझल रहती है। आवरण के हटने पर मोक्ष है, शिव का परम पद की प्राप्ति है। सातवां, नाथ संप्रदाय अथवा योगिनी कौल मार्ग। पूर्व मध्य युग में शैव धर्म नए रूप और नए आयाम में विकसित हो रहा था, जिसे कालांतर में नाथ संप्रदाय का नाथ पंथ अथवा हठ योग और सहजयान सिद्धि कहा गया। इस संप्रदाय में नौ नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में माना गया। इसके पहले नाथ स्वयं शिव थे। दसवीं सदी के उत्तरार्ध में मत्स्येन्द्रनाथ अथवा मच्छंदर नाथ ने इस संप्रदाय का प्रचार किया। उनका जन्म बंगाल के एक धीवर परिवार में हुआ था। उन्होंने बंगाल और असम आदि विभिन्न स्थानों की यात्राएं की और तत्पश्चात योगिनी कौल नामक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौल ज्ञान निर्णय और अकुलबीर तंत्र नामक उनके ग्रंथों में योगिनी कौल सिद्धांत की विस्तृत चर्चा की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार शिव का नाम अकुल है तथा उसकी शक्ति कुल, दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। एक दूसरे के बिना वे नहीं रह सकते। इन दोनों के संयोग से सृष्टि होती है। इस संयोग प्रक्रिया को मानव जीवन में गृहित करना ही इसकी धार्मिक क्रिया है। वस्तुतः संयोग का प्रतीक स्त्री पुरुष का संबंध है। ऐसी स्थिति में वह साधना ब्रजयानी बौद्धों की साधना से साम्य रखती है। इसलिए मत्स्येन्द्रनाथ को अवलोकितेश्वर के अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है और तिब्बत में उन्हें सिद्ध लुईपाद के रूप में माना गया है। अकुलबीर नामक तंत्र में वह स्वयं शिव और बुद्ध के एकत्व को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस युग में वह शिव और बौद्ध तंत्र एक दूसरे के समीप आए तथा भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन को नया उत्साह प्रदान किया। गोरखनाथ ने मत्स्येन्द्रनाथ के पंथ का अनुगमन किया। वह उनके निष्क्रिय शिष्यों में थे वह उनके सक्रिय शिष्यों में थे। भारत के संत्रस्त सामाजिक और धार्मिक जीवन को उन्होंने नवीन प्रवाह प्रदान किया। अपने स्पष्ट और अनावृत व्यवहार से तात्कालिक समाज को उन्होंने नया मार्ग दर्शन किया, जिसमें न ऊंच नीच की भावना थी, न कर्मकांड और पाखंड की। संभवतः वे उत्तरी पश्चिमी भारत के निवासी थे। रावलपिंडी जिला, जो आज पाकिस्तान में है, उनका जन्म स्थान बताया जाता है। वैसे गोरखनाथ से संबंधित अनेक स्थान पाकिस्तान में है। गोरखनाथ का टीला झेलम जिले में स्थित है। गोरख टहरी पेशावर शहर में है तथा गोरख की धुनी बलूचिस्तान की लाल बेला रियासत में है। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया तथा अपने सिद्धांत का प्रचार किया। उन्होंने मत्स्येन्द्रनाथ के कतिपय मंत्रों का खंडन किया तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य का समर्थन किया। उन्होंने साधना में स्त्रियों के प्रवेश का विरोध किया तथा यह मत व्यक्त किया कि उनके संसर्ग से योग की साधना संभव नहीं। अतः उन्होंने इंद्रिय निग्रह और सदाचार की व्याख्या की, साथ ही सच्चरित्रता और जीवन की पवित्रता पर उन्होंने बल दिया। योग मार्ग गोरक्ष सिद्धांत संग्रह जैन जैसे ग्रंथों में उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार शिव ही परम तत्व है। जब उसकी सृष्टि की इच्छा हुई तब वह शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। शक्ति की पांच स्थितियां हैं। पहली नीजा, क्वेश्चन परम सिंह में लीन, दूसरी परा, क्वेश्चन प्रत्यक्ष होने की कला, तीसरी अपरा, क्वेश्चन में अभिव्यक्ति की स्थिति, चौथा सूक्ष्मा, क्वेश्चन में अभिमान का उदय, और पांचवा कुंडली, अभिमान की चेतना की क्रिया। इसी प्रकार उन्होंने शिव के भी पांच रूपों का निर्देशन किया है। पहला अपर, दूसरा परम, तीसरा शून्य, चौथा निरंजन और पांचवा परमात्मा। उनमें आनंद के पांच स्तर हैं। पहला परमानंद, दूसरा प्रबोध, तीसरा चदुदय, चौथा प्रकाश और पांचवा सोहय। फलतः इससे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। उसकी प्रतिकृति पिंड है। कुंडलिनी की शक्ति को सुषुम्ना के मार्ग से छह चक्रों में ऊपर की ओर सिर स्थान में अमृत केंद्र सहस्त्रार में ले जाते हैं, तब शक्ति और शिव का सायुज्य होता है और परम शिव की प्राप्ति होती है। यह समस्त क्रिया योग के अंतर्गत आती है। इस साधना में यह माना जाता है कि वीर्य की रक्षा, श्वास के नियमन और रसों के प्रयोग से योग संपुष्ट होता है। वस्तुतः गोरखनाथ के कारण नाथ संप्रदाय का शीघ्रता से विकास हुआ। यही नहीं, गोरखनाथ से संबंधित अनेक चमत्कारिक कथाएं भी प्रचलित हुई तथा यह विश्वास व्यक्त किया गया कि उनका नाम लेने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वे अपनी साधना से उच्चतम आध्यात्मिक शिखर पर पहुंच गए थे। नेपाल, तिब्बत, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और उत्तर भारत में उनके देवत्व से संबंधित अनेक अनुश्रुतियां फैली। उन्हें शिव, ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवताओं की तुलना में अधिक महत्व दिया गया था तथा समाज में उनका उच्चस्त स्थान स्वीकार किया गया था। गोरक्ष संहिता और गोरक्ष सिद्धांत जैसे उनकी कृतियां अत्यंत आदृत और ख्यात है। उनके हठ योग और सहज ज्ञान योग का तात्कालिक समाज में तीव्रता से प्रसार हुआ, जिसने भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन को आंदोलित किया। उनके सिद्धांतों में प्राचीन शैवों, आजीवकों, ब्रजयान बौद्धों आदि के मतों और सिद्धांतों का अनुपम समन्वय है। अनंग ब्रज या रमण ब्रज जैसा उनका बौद्ध नाम भी मिलता है। वस्तुतः गोरखनाथ ने महात्मा बुद्ध की तरफ मध्यम मार्ग का अनुगमन किया। उन्होंने बौद्ध और हिंदू तांत्रिकों की अनैतिक क्रियाओं तथा आदर्शवाद के आध्यात्मिक सूक्ष्मीकरण और यज्ञिक क्रियाओं की अतिरंजना का विरोध किया। संयम और सदाचरण को उन्होंने प्रधान आधार माना, साथ ही सहज जीवन पद्धति को अपनाने के लिए निर्देश दिया। गोरखनाथ के पश्चात नाथ संप्रदाय में अनेक शिष्य हुए जिन्होंने अपनी साधना और चमत्कारिक शक्ति से लोगों को आकृष्ट किया। ऐसे सिद्धों में कहलप्पा, चरपटी, चौरंगीनाथ, गोपीनाथ आदि प्रमुख हैं जो अपनी साधना और सिद्धि से लोगों को चकित कर देते थे। ये लोग अपनी घर गृहस्थी त्याग कर योगी बनकर अपने फटे कानों, कुष्ठ में कनफटे योगी में मुद्रा धारण करके, सिर पर जटा रखकर, गले में रंग बिरंगी जोगड़े पहने, कंधे पर सिंगिया रखे और हाथ में सोटे लिए घर घर अलख जगाते घूमते थे तथा अलख निरंजन की ध्वनि से पूरा वातावरण गुंजरित करते थे। नाथपंथियों, सिखों और तांत्रिकों के जीवन पद्धति में आचरण, नैतिकता आदि का कोई स्थान नहीं था। उनके दर्शन में खाने पीने और भोगने की खुली छूट थी। ज्ञान सिद्धि में इंद्रभूति का कथन है कि योगी यह नहीं देखता था कि उसे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या जाना है, कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। कुलारा वितंत्र नामक ग्रंथ में कहा गया है कि कौलिकों को वे सभी सुविधाएं खानी चाहिए, सभी वस्तुएं खानी चाहिए जिन्हें सभी लोग वर्जित मानते हैं, उन पेयों को ग्रहण करना चाहिए जिन्हें सभी लोग निंद्य मानते हैं तथा उन स्थानों पर जाना चाहिए जहाँ के लिए लोग मना करते हैं। वस्तुतः कौल अनुयायियों के मतानुसार मांस, मद, रक्त, भज्जा, मूत्र, विष्ठा आदि विहित थे। ऐसा लगता है कि उनके दर्शन में ऐसी निंदनीय बातों का समावेश इसलिए किया गया कि वे समाज की वर्तमान गतिविधियों में अपने इन कार्यों से अपना विरोध प्रकट करना चाहते थे। हठ योग प्रदीपिका जैसे ग्रंथों में कौल अनुयायियों के कार्यों का लाक्षणिक अर्थ अभिव्यक्त किया गया है, जैसे गो मांस का अर्थ जीव को मोड़कर तालू में लगाना था, वारुणी का अर्थ सिर स्थान में ब्रह्मारंध्र के समीप सहस्त्र दल कमल की जड़ के निकट की योनि में स्थित चंद्रमा से रिसने वाला रस था। चर्या पदों की टीका करते हुए मुनिदत्त ने कहा कि डुमनी का अर्थ नैरात्म्य और सुंडिनी कुष्ठ में शराब विक्रय करने वाली का अभिप्राय ईड़ा और पिंगला नामक नाड़ियों के बीच स्थित सुषुम्ना नाड़ी से है। इसी प्रकार की लाक्षणिक व्याख्या हेवज्र तंत्र में की गई है, जिसमें ललना का अर्थ स्त्री न होकर इस नाम की नाड़ी है तथा मुद्रा की का अभिप्राय भी स्त्री न होकर उंगलियों के विशेष चिन्ह को लिया गया है। इस प्रकार मध्य मांस और मैथुन के वे अभिप्राय नहीं जो समाज में स्वीकृत हैं, बल्कि इसके इनके अर्थ योग रस और वज्र की साधनाओं में अभिव्यक्त किए गए, किंतु ऐसे लाक्षणिक अर्थ लेकर जो समाज में प्रचलित नहीं थे नाथपंथियों और योगियों ने समाज की वर्तमान प्रणाली पर अपना क्षोभ व्यक्त किए। उनके विचारों में वर्तमान सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के प्रति प्रबल विद्रोह और व्यापक असंतोष था, जिससे तात्कालिक भारत में सामाजिक और धार्मिक क्रांति हुई। तीसरा, शक्ति पूजा और शाक्य संप्रदाय, उद्भव और उत्कर्ष। ये नया हेडलाइन है। हिंदू धर्म में शक्ति की पूजा अत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित है। शक्ति को नारी रूप में अभिव्यक्त किया गया है, जिसके दिव्य स्वरूप को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। सृष्टि की प्रक्रिया में नारी का योगदान स्पष्टतः अभूतपूर्व है। शक्ति का प्रारंभिक रूप शिव की पत्नी उमा अर्थात पार्वती है, जो जग जननी कही जाती है। वस्तुतः उनका तांत्रिक और दार्शनिक विकास शक्ति के रूप में हुआ, अतः शक्ति और शिव की अभिन्नता स्वाभाविक है। शक्ति के रूप में विकसित होकर पार्वती कपिलावरण काली और सिंहवाहिनी दुर्गा बन गई। कालांतर में उन्होंने असीमित शक्ति से संपन्न महाकाली का रूप ग्रहण किया। यह स्मरणीय है कि शिव भी महाकाल कहे जाते हैं, इसलिए शक्ति और शिव की एकात्मकता स्वयं सिद्ध है। वस्तुतः हिंदू धर्म में विष्णु और शिव के अतिरिक्त अगर किसी देवता की महिमा और गरिमा चरम सीमा पर पहुंची तो वह केवल शक्ति दुर्गा ही की। वैष्णव और सर्वधर्म की तरह समाज में शक्ति का ही प्रभाव रहा तथा इसके अनुयायी अत्यधिक विकट और कट्टर भी रहे। शक्ति की पूजा और उपासना करने के कारण इसके धर्मावलंबी शाक्त कहे गए। कालांतर में यही शक्ति संप्रदाय हिंदू धर्म का प्रभावकारी और चमत्कारिक संप्रदाय बन गए। धीरे धीरे शक्ति के साथ अनेक नाम जुड़ गए जो उनके विकसित होने वाले क्रमिक रूपों के परिचायक हैं। काली, चमुंडा देवी, शिवानी, रुद्राणी, भवानी आदि विभिन्न नाम उनके शैव संबंध को व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही लक्ष्मी, वैष्णवी, ब्राह्मी, इंद्राणी आदि विभिन्न नाम भी उनको प्रदान किए गए, जो उत्तरोत्तर वृद्धिशील स्वतंत्र अस्तित्व को स्पष्ट करते हैं, न कि दूसरे देवताओं के प्रभाव को। वाग्देवी सरस्वती से भी उनका संबंध स्थिर किया जाता है तथा उन्हें बुद्धि और प्रज्ञा की देवी माना जाता है। मध्यकाल तक आकर शक्ति की उपासना बहुत अधिक बढ़ गई तथा उन्हें सृष्टि पालन और संहार कर्त्री का रूप प्रदान करके उनकी उपासना और आराधना की जाने लगी। अन्य देवताओं की तरह शक्ति देवी का रूप भी प्रागैतिहासिक काल से ही निखरने लगा था। उमा, पार्वती, अंबिका, हेमवती, रुद्राणी और भवानी जैसे नाम आदि शक्ति के रूप में वैदिक साहित्य में मिलते हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल में एक पूरा सूक्त ही शक्ति की उपासना में विवृत है, जिसे तांत्रिक देव सूक्त कहते हैं। महर्षि अभ्रीण की ब्रह्मावादिनी दुहिता का नाम वाक था, जिसकी देवी के साथ अभिन्नता थी, उसी के उद्गार इस सूक्त में दर्शित होते हैं। सिंधु सभ्यता की मात्र देवी शक्ति पूजा की ओर लक्षित करती है। कालांतर में उस वाक शक्ति का कथन है, मैं ही ब्रह्मा के द्वेषियों को मारने के लिए रुद्र का धनुष चढ़ाती हूँ, मैं ही सेनाओं को मैदान में ला खड़ी करती हूँ, मैं ही आकाश और पृथ्वी पर सर्वत्र व्याप्त हूँ। निश्चय ही यह कथन शक्ति की महत्ता और तेजस्विता का व्यक्त करता है। वह अन्यत्र कहती है, मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी हूँ, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली साक्षात करते योग्य पर ब्रह्मा को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है, अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं वह सब मेरे लिए करते हैं। स्पष्ट है कि दैवी अद्वैत रूप में व्याप्त है। जगत के उद्भव पालन और संहार की जो कथा देवी से संबद्ध की गई उसका सूत्र ऋग्वेद में ही है। शक्ति का तत्व अत्यंत विस्तृत है, वह पृथ्वी और आकाश दोनों से परे है। क्वेश्चन में परो दिवा पर एना पृथ्व्या। अंबिका के रूप में देवी का उल्लेख वाजसनेयी संहिता में हुआ है, जहां उन्हें रुद्र की बहन कुष्ठ में स्वसा बताया गया है। तैतरीय और शतपथ ब्राह्मणों में भी अंबिका को रुद्र की बहन कहा गया है। वैसे तैतरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी पार्वती का संदर्भ मिलता है। उमा शब्द का उल्लेख केन उपनिषद में हुआ है, जहां इन्हें विद्या देवी का रूप मानते हुए हेमवती कहा गया है। हेमवती का अर्थ हिमालय के पुत्री बतलाया गया है। उनका प्रादुर्भाव देवताओं को यह शिक्षा देने के लिए होता है कि अपनी तुच्छ शक्ति के ऊपर कभी गर्व और अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान परब्रह्मा की शक्ति के वे प्रतीक मात्र हैं। उसी परब्रह्मा नियंता के निर्देशन में रहकर वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकने में समर्थ होते हैं। अतः उमा हेमवती विद्या और ज्ञान की अधिष्ठाती देवी है। पार्वती, उमा, हेमवती आदि शब्द पर्वती प्रदेश को इंगित करते तथा उस प्रदेश में देवी शक्ति के प्रभाव को भी अभिव्यंजित करते हैं। यही नहीं, शिव को भी कैलाशवासी माना गया है तथा कैलाशपति के रूप में उनकी आराधना उनकी गिरि प्रदेश से संबंधित होना व्यक्त करता है। जिस प्रकार प्रारंभ में शिव की प्रधानता दस्यु, किरात, निषाद जैसी आदिम जातियों में अधिक हुई, उसी प्रकार शक्ति की प्रधानता भी आदिम जातियों और पर्वती निवासियों में तीव्रतापूर्वक हुई। इस प्रकार प्रकृति की शक्ति को महत्व प्रदान करके माया के रूप में नित्य शक्ति की अभिव्यंजना की गई। माया को प्रज्ञा और स्वप्न दोनों माना गया, इसलिए देवी शक्ति वाग देवी सरस्वती भी हुई और स्वप्नमयी मोहिनी रात्रि भी। शक्ति ज्ञान और मोह को उद्भूत करने वाली क्रिया शक्ति सर्जन अथवा सृष्टि शक्ति से संबंधित हुई। जगजननी के रूप में वही अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित करने लगी। दुर्गा अथवा महाकाली के रूप में तमस रूपी असुरों का संहार करने लगी। योग निद्रा के रूप में वह समस्त प्राणियों को निद्रा के वशीभूत हो करने लगी। प्रसन्न होकर होने पर वह सभी कामनाओं को पूरा करने लगी तथा भद्रकाली के रूप में अपनी स्तुति होने पर मनुष्य को कभी पराजित नहीं होने देती थी। इस प्रकार देवी का शक्ति निरंतर बढ़ती गई और उसका प्रभाव व्यापक होता गया। महाभारत के कतिपय उद्धरण इस बात के प्रमाण है कि देवी शक्ति उस समय तक एक शक्ति संपन्न स्वतंत्र देवी के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। ये उद्धरण उनके पूर्ववर्ती स्वतंत्र अस्तित्व को भी उद्घाटित करते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार कृष्ण की सलाह पर भावी युद्ध में विजय प्राप्ति के निमित्त अर्जुन ने दुर्गा की आराधना की थी, जिसमें उन्होंने देवी दुर्गा के कई नामों की स्तुति की, जिनमें कुमारी, विजया, उमा, कांतरवासिनी, कौशिकी, काली, महाकाली, कपाली, चंडी, कात्यायनी, कराला आदि नाम प्रमुख हैं। उस स्तुति के एक श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रातः काल शक्ति का स्तोत्र पढ़ता है वह संग्राम में विजयी होता है तथा उसे लक्ष्मी की एकांतिक प्राप्ति होती है। विराट पर्व में युधिष्ठिर ने भी देवी की स्तुति की है, जिसमें उन्होंने देवी को महिषासुर मर्दिनी, यशोदा के गर्भ से जन्म लेने वाली विंध्याचल निवासिनी, नारायण की परम प्रिया और वासुदेव की भगनी कहा गया है। कालकाली महाकाली को मदिरा, मांस और पशु में रुचि रखने वाली भी दर्शित किया गया है। विंध्य क्षेत्र को उनका शाश्वत स्थान बताया गया है तथा घंटा, पास, धनुष, चक्र आदि उनके विविध अस्त्र उल्लिखित किए गए हैं। देवी शक्ति द्वारा विंध्य पर्वत पर अपना शाश्वत स्थान बनाने को के पहले की कथा महाभारत में स्तुति के संदर्भ में दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि देवी का जन्म नंद गोप के वंश में यशोदा के गर्भ से हुआ था। जब कंस ने कन्या के रूप में उन्हें शिला पर प्रक्षिप्त किया, उस समय वह आकाश मार्ग में चली गई और विंध्य पर्वत पर जा बसी। देवी के उत्पन्न होने तथा उनके विविध रूपों की कथा पुराणों में दी गई है। हरिवंश पुराण के अनुसार विष्णु ने पाताल लोक में जाकर काल रूपिणी योग निद्रा से यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए आग्रह किया। जन्म लेने के उपरांत वे कंस द्वारा शिला पर पटकी गईं तथा आकाशगामी होकर उन्होंने विंध्य पर्वत पर शाश्वत रूप से स्थान ग्रहण किया। कुश गोत्र की होने के कारण वे कौशिकी भी कही गई। शुभ निशुंभ जैसे असुरों का भी उन्होंने संहार किया। कालांतर में सुरा मांस और बलि से उनकी पूजा की जाने लगी। इसी प्रकार की कथा विष्णु पुराण में दी गई है तथा निद्रा को यशोदा के गर्भ से उत्पन्न देवी के रूप में विवृत किया गया है। उत्पन्न होने पर कंस ने उन्हें शिला पर पटकना चाहा, पर वे उसके हाथ से छूटकर आकाश में स्थित हो गईं। मार्कंडेय पुराण में शक्ति की व्यापकता और महत्ता विवृत है। उसमें शक्ति के तीन रूपों का वर्णन किया गया है। पहला महाकाली क्वेश्चन प्रथम अध्याय, दूसरा महालक्ष्मी क्वेश्चन में 2-4 अध्याय और तीसरा महासरस्वती क्वेश्चन में 5-13 अध्याय। उक्त पुराण में देवी को ही समस्त प्राणियों में शक्ति, दया, शांति, तुष्टि, बुद्धि और माता के रूप में अवस्थित बताया गया है। शक्ति ही पृथ्वी रूप में सृष्टि की आधारशिला है तथा जल रूप में संपूर्ण जगत को तृप्त करती है। अपार बल से युक्त होकर वह वैष्णवी है, वह जगत को तृप्त करती है। अपार बल से युक्त होकर वह वैष्णवी है, वह जगत की कारण भूता परा माया है। जीव का बंधन और मोक्ष उसी से है। संपूर्ण विद्याएं उसी में स्थित है। विश्व की समस्त स्त्रियां उसी का प्रतिरूप है। वह परावाणी है। उक्त पुराण में यह भी उल्लिखित है कि सभी जीव महामाया के प्रभाव से वासना रूपी भ्रमर से युक्त मोह रूपी गर्त में पतित होते हैं। जगदीश्वर श्री विष्णु की योग निद्रा स्वरूप पीढ़ी महामाया ही इस विश्व को विमोहित करती है। वे महामाया ज्ञानियों के चित्त का बलपूर्वक आकर्षण करके मोह में गिराती हैं। अतः उसमें आगे कहा गया है कि वे योग निद्रा महामाया नित्य है जो समस्त जगत में व्याप्त है तथा जो अनेक प्रकार से उत्पन्न हुए। जब देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए उनका आविर्भाव होता है तब उन नित्य रूपा देवी को संसार में उत्पन्न हुई कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण में ही देवी दुर्गा से संबंधित दुर्गा सप्तसदी नामक अंश है जो अत्यंत महनीय और प्रख्यात है। नवरात्र काल में देवी की आराधना में दुर्गा सप्तसदी का ही पाठ किया जाता है और मनोवांछित फल की कामना की जाती है। महिषासुर को मारने के लिए विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, सूर्य आदि विभिन्न देवताओं के मुख से निकले हुए तेज से शक्ति का उद्भव हुआ जो महिषासुर मर्दिनी के रूप में ख्यात हुई। उस देवी को सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र प्रदान किए जिनका उन्होंने असुरों का विनाश करने में उपयोग किया। देवी की उत्पत्ति से संबंधित एक और कथा मार्कंडेय पुराण में विवृत है जिसके अनुसार शुभ निशुंभ जैसे असुरों के आतंक से त्रस्त होकर देवगण हिमालय पर जाकर देवी की स्तुति कर रहे थे। उसी समय भगवती पार्वती गंगा स्नान करने के लिए जा रही थी। अतः उन्होंने देवगण से स्तुति के विषय में पूछा। तभी उनके शरीर के कोष से देवी शिवा का उदय हुआ जिन्होंने अपने को वही देवी बतलाया जिसके लिए देवतागण स्तुति कर रहे थे। कोष से उत्पन्न होने के कारण वह देवी कौशिकी कही गई। पार्वती के शरीर से अंबिका के निकलने के कारण उनका शरीर कृष्ण वर्ण का हो गया जिसके कारण उन्हें काली की संज्ञा भी दी गई। जब वे असुरों का संहार करने के लिए गई थी तो उनका ललाट क्रोध से कृष्ण वर्ण का हो गया था और चंड मुंड को मारने के लिए उनके शरीर से कराल मुखी काली निकली थी। इसलिए अंबिका ने उनका नाम चमुंडा रखा। उसके साथ ही ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बराही, नरसिम्ही और इंद्री के साथ शक्तियां भी अंबिका से ही उत्पन्न हुई थी। नंदसुता, साकंभरी, भीमा, भ्रामरी आदि भी देवी के कई स्वरूप थे जिनका उन्होंने स्वयं उल्लेख किया था। वायु पुराण में उल्लिखित है कि उमा के क्रोध से भद्रकाली उद्भूत हुई थी। मत्स्य पुराण के वर्णन के अनुसार देवताओं के कार्य संपन्न करने के निमित्त उमा के शरीर से देवी की उत्पत्ति हुई थी। अतः इन वर्णनों से स्पष्ट है कि शक्ति देवी शिव की पत्नी थी तथा शिव और शक्ति में अभिन्नता थी। शिव उमापति थे और शक्ति महेश्वरी, महाकाली आदि। गौरी जो प्रारंभ में वरुण की पत्नी थी बाद में शिव की प्रिया बन गई और शिव गौरीश हो गए। वस्तुतः शक्ति में सभी देवताओं की दिव्यता समाहित थी तथा सभी देवताओं की शक्ति का परिवार शिव के परिवार में समाहित हो गया तथा शिव का परिवार उन्नत होकर व्यापक हो गया था। सप्तमातृका के रूप में शक्ति का विकास हुआ जिनमें ब्रह्माणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बराही, इंद्राणी और यमी या चमुंडा उनके सात स्वरूप माने गए। कुषाणकालीन स्थापत्य कला में सप्त मातृकाओं के चित्र मिलते हैं। गुप्तकालीन कोशकार अमर सिंह ने सप्त मातृका की चर्चा की है। कुमार संभव में इन्हें मातरह कहा गया है। स्कंदगुप्त के बिहार स्तंभालेख में भी इसका उल्लेख है। यही नहीं, गुप्त सम्राटों के विभिन्न मुद्राओं पर लक्ष्मी और दुर्गा के चित्र अंकित है। हिंदू धर्म में अन्य देवताओं की तुलना में देवी शक्ति की सत्ता प्रभावशाली आधार पर स्थापित हुई तथा उनका वैभव और ऐश्वर्य धीरे धीरे अत्यंत शक्तिशाली होने लगा। फलतः मधु कैटव, महिषासुर, शुंभ, चंडमुंड, रक्तबीज जैसे भयंकर असुरों का विनाश करके वे देव परिवारों में सर्वश्रेष्ठ हो गई, क्योंकि उन अत्याचारी असुरों का वध कर डालने का बल शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि बलशाली देवताओं के पास भी नहीं था। अतः देवी शक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व समूह खाया जो अत्यंत व्यापक और अपार ऐश्वर्य युक्त था। अपने पति शिव से पृथक करके काली अथवा दुर्गा के रूप में उनकी स्वतंत्र उपासना प्रारंभ हो गई। इसके साथ ही अर्धनारीश्वर के रूप में शक्ति और शिव दोनों की स्थितियां संयुक्त हुई तथा शिव और शक्ति दोनों संप्रदायों के पारस्परिक एकीकरण भी हुआ, किंतु शक्ति का विस्तार हुआ बड़ा था, मन व्यापक था, इसलिए उसकी प्रधानता स्वाभाविक थी। देवी शक्ति के व्यापक विस्तार में देवी के अनेक रूप समाविष्ट हो गए तथा सभी देवियां एक देवी के साथ अभिन्न हो गईं। उमा के रूप में वे शिव की पत्नी तथा सबकी रक्षा करने वाली देवी माँ है। तत्पश्चात उमा का नाम पार्वती और हेमवती के साथ जुट गया, जिससे देवी का और विस्तार हुआ। हिमालय की पुत्री और पर्वत प्रदेश से संबद्ध होने के कारण देवी की पूजा पर्वतीय प्रदेशों में तीव्रता से फैली। इसके साथ ही पुलिंद, सबर, बर्बर और जैसी जंगली जातियों में भी वे आराध्य देवी बनी, जिन्हें सूरा, मांस, बलि आदि का नैवेद्य प्रदान किया जाता था। उनके प्रारंभिक नामों में काली और कराली नाम भी थे, जो अग्नि के साथ जिह्वाओं में थी। जैसा पहले उल्लेख किया जा चुका है, रुद्र का अग्नि के साथ एकीकरण हुआ था और कालांतर में अग्नि के साथ जिह्वाओं के नामों में से दो जिह्वाओं के नाम शक्ति के लिए प्रयुक्त होने लगे, जो शक्ति और शिव के सामंजस्य का परिचायक है। रुद्र शिव भी आदिम जातियों के देवता थे तथा जंगली जातियों और दस्युओं द्वारा पूजित थे, किंतु परवर्ती काल में उनकी पत्नी शिवा शक्ति ने अपना विस्तार करके आदिवासियों, आदिम जातियों, जंगल निवासियों, पहाड़ी जातियों तथा अन्य लोगों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। मनुष्य की अंतस प्रवृत्तियां शक्ति की ही रूप मानी गई, जिसमें इच्छा, क्रिया, सजन, मोह, विनाश आदि सभी सम्मिलित थे। अतः शक्ति के तीन प्रधान रूप माने गए हैं, पहला सौम्य रूप, दूसरा प्रचंड रूप और तीसरा काम प्रधान रूप। समाज में प्रायः देवी के सौम्य रूप की ही पूजा आराधना प्रचलित है। जनसाधारण देवी के सौम्य रूप की ही उपासना करता है। देवी के प्रचंड रूप की पूजा कापालिक और कालामुख जैसे घोरपंथी संप्रदाय के लोग करते हैं, जिसमें बलि, सूरा, मांस आदि का निर्वाध प्रयोग किया जाता है। काम रूपिणी देवी की उपासना शक्ति लोग करते हैं, जो देवी के मोह और माया को समस्त जगत से ऊपर मानते हैं। वे देवी को आनंद भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, ललिता आदि कहते हैं तथा शिव को आनंद भैरव या महाभैरव। शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में देवी के इसी अलौकिक सौंदर्य का चित्रण किया। उच्च त्रिपुर सुंदरी का निवास चिंतामणि गृह है, जो कल्प वृक्ष अथवा कदम्ब वृक्षों से आवृत मणिमय मंडप में स्थित है। शिव, सदाशिव और महेशान उनके मंच पर्यंक और अपब्रह्मण है तथा ब्रह्मादेव, हरि, रुद्र और ईश्वर मंच के पैर हैं। अतः प्रतीकों के आधार पर देवी की सर्वोच्चता सिद्ध की गई। महाभैरव को देवी की आत्मा माना गया, जिनके नौ व्यूह हैं। पहला काल व्यूह, दूसरा कुल व्यूह, तीसरा नाम व्यूह, चौथा ज्ञान व्यूह, पांचवा चित्त व्यूह। कोष्ठ में अहंकार, चित्त, बुद्धि, महत और मन। अतः देवी भी नौ व्यूहों की आत्मा मानी गई। उनके सम्मिलन से सृष्टि होती है। सृष्टि में महाभैरवी और संहार में महाभैरव की प्रधानता होती है। यद्यपि सृष्टि के पहले शिव और शक्ति को ही सत्ता रही है, प्रकाश रूप में शिव शक्ति के विमर्श रूप में स्थित होकर बिंदु स्वरूप हो जाते हैं। तत्पश्चात शक्ति भी इन शिव में प्रविष्ट हो जाती है। तब भक्त बिंदु विकसित होकर नाद बन जाता है। नाद और बिंदु संपृक्त होकर काम को उत्पन्न करते हैं। श्वेत और रक्त बिंदु क्रमशः शिव और शक्ति तत्व मिलकर कला को उद्भूत करते हैं। काम और कला से त्रिपुर सुंदरी स्वरूप काम कला का उदय होता है जो सर्वोक्त स्थिति है। शक्ति के लिए देवी भागवत में कहा गया है, उनके अखिल प्रभाव को न तो ब्रह्मा न हरि न शिव और न अनंत जानते हैं, ये सब भी उनके अंश के अंश है। फिर अन्य देवी के विषय में क्या कहा जाए। जगदम्बिका के लिए हमारा सदा नमस्कार हो, उनके पदम अंज की रज को पाकर ब्रह्मा विश्व का सृजन करते हैं, विष्णु सर्वदा पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं, उनकी कृपा के बिना ये देवता भी असमर्थ हैं, उन जगदम्बिका के लिए हमारा नमस्कार है। देवी को वेदांत प्रतिपाद ब्रह्मा से अभिन्न अथवा तद्रूप निर्दिष्ट किया गया है। वे कुष्ठ में ब्रह्मा विष्णु और महेश, उस पराशक्ति शक्ति देवी का जिसको ब्रह्म कहते हैं, जो परमात्मा रूप में है, उसकी नित्य और सनातन मानकर सदा मन से ध्यान करते हैं। आगे कहा गया, जो दैवी शक्ति है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही देवी है, इन दोनों में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। इस प्रकार देवी ही ब्रह्मा रूपिणी परमात्मा और शक्ति संपन्न मानी गई। पूर्व मध्ययुगीन साक्ष्यों में भी शक्ति पूजा का पता चलता है। भेड़ाघाट कोष्ठ में जबलपुर के निकट 64 योगिनी का मंदिर है, जिसमें 900 से 1100 ईस्वी के बीच देवी की अनेक प्रतिमाएं गढ़ी गई। उसमें शक्ति की 44 प्रतिमाएं हैं, प्रधानतः दुर्गा और सप्त मंत्रिकाओं की है। उनमें कुछ पर अभिलेख भी खुदे हैं। इस तरह के मंदिर खजुराहो और सुराडा में भी हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश से कुछ अन्य स्थानों में सप्त मंत्रिकाओं के अतिरिक्त दुर्गा की भी मूर्तियां मिलती हैं। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के अभिलेख में दुर्गा को विभिन्न नामों से अभिहित किया गया है। मूर्ति को यक्षिणी देवी कहा गया है तथा स्तुति के प्रारंभ में दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के रूप में स्मरण किया गया है। एक दूसरे अभिलेख में उन्हें कांचन देवी, सर्वमंगला देवी या अंबा की संज्ञा दी गई है। अभिलेख से विदित होता है कि उनकी स्तुति में अपार गुणगान किया जाता था। देश में शक्ति की प्रतिमाएं महिषासुर मर्दिनी अथवा दुर्गा के रूप में ही अधिकता से मिली है। नौ दुर्गा का भी मंदिर निर्मित होता था, जिसको पूजन अर्चन के लिए दान दिए जाते थे। चामुंडा, चंडी, काली आदि रूप में दुर्गा की उग्र मूर्तियां बंगाल से मिली हैं। आसाम स्थित कामाख्या देवी का मंदिर आज भी प्रसिद्ध है, जो देवी के काम रूप को अभिव्यक्त करता है। जम्मू के निकट कश्मीर स्थित शारदा देवी का मंदिर शक्ति के सौम्य रूप का प्रतीक है, जो आज वैष्णो देवी के रूप में प्रख्यात है। इस मंदिर के विषय में 11वीं सदी का लेखक अल्बरिनी लिखता है, कश्मीर के भीतर राजधानी से लगभग 2 या 3 दिनों की यात्रा के बाद बलोर पर्वत की दिशा में लकड़ी की शारदा नामक मूर्ति है, जो यात्रियों द्वारा अत्यधिक आदृत और सम्मानित है। मधुमती के दाएं तट पर स्थित शारदा देवी का मंदिर पूरे देश में ख्यात था, जहां दूर दूर से दर्शनार्थी आते थे। कल्हड़, बिल्हड़ और हेमचंद्र जैसे अनेक पूर्व मध्ययुगीन साहित्यकारों ने भी शारदा देवी के मंदिर का वर्णन किया है। कल्हड़ ने लिखा है कि गौण नरेश के अनुयायियों ने शारदा देवी के दर्शन करने के बहाने कश्मीर में प्रवेश किया था। जून राज ने अपने द्वितीय रज तरंगड़ी में शारदा देवी के मंदिर की स्थिति और ख्याति का उल्लेख किया है। अबुल फजल ने आईनी अकबरी में शारदा देवी के प्रस्तर मंदिर का वर्णन किया है, जिसके अनुसार हाचामून से 2 दिन की यात्रा की दूरी पर पद्धति नामक नदी है, जो दर्दू देश से होकर बहती है। सोना भी इस नदी में पाया जाता है। इसे किनारे पर पत्थर का बना मंदिर है, जिसे दुर्गा भी कहते हैं। शक्ति पूजा के प्रधानतः 3 केंद्र है, कश्मीर, कांची और कामाख्या। कश्मीर और कांची श्री विद्या के प्रधान पीठ हैं तथा कामाख्या कौल मत का प्रधान केंद्र है। शक्ति पूजा का ज्ञान तत्व और दर्शन तत्व, यह हेडलाइन है। शक्ति पूजा का ज्ञान तत्व सैव सिद्धांतों से तो अवश्य प्रभावित है, किंतु शक्ति की दार्शनिक सत्ता और व्यवहारिकता सत्ता स्वतंत्र और उन्मुक्त सत्ता है, जो उन्हें सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। प्रज्ञा और स्वप्न दोनों स्थितियां महामाया की ही रूप हैं। शक्ति में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अंश होने के कारण सर्जन, पालन और संहार तीनों तत्वों का समन्वय है, अतः भक्त उन्हें जन्म जगन माता के रूप में मानते हैं। दार्शनिक सत्ता में शिव और शक्ति आद्य तत्व हैं, जो देश, काल और तर्क से परे हैं। शक्ति ही अंतर्मुख होने पर शिव है और शिव ही बहिर्मुख होने पर शक्ति। अंतर्मुख और बहिर्मुख दोनों भाव सनातन है। शिव तत्व में शक्ति भाव कम होता है और शक्ति तत्व में शिव भाव कम, किंतु दोनों में अपनी ही प्रधानता होती है। जब दोनों ही की स्थिति समान अर्थात समभाव युक्त होती है तब सामरस्य होता है और जिसे सब परम शिव कहते हैं और शाक्त पूरा शक्ति। भेद केवल शब्दों का है। आलोक और स्फूर्ति के रूप में जो शिव है शक्ति में प्रवेश करके वे ही बिंदु का रूप ग्रहण करते हैं। इसी तरह शक्ति का शिव में प्रवेश होता है। अतः दोनों तत्वों के सम्मिलन से नाद का उदय होता है। जब बिंदु और नाद तत्व मिलते हैं तब मिश्र बिंदु आविर्भूत होता है, जो स्त्री पुरुष शक्तियों का परिचायक है और काम की संज्ञा से जाना जाता है। श्वेत और रक्त बिंदु क्रमशः पुरुष और स्त्री तत्व है। जब श्वेत रक्त और मिश्र बिंदु मिलकर एक हो जाते हैं तब काम कला होती है और सृष्टि का उद्भव होता है। इस प्रकार शक्ति तत्व चार है। पहला मूल बिंदु, दूसरा नाद, तीसरा पुरुष का श्वेत बिंदु और चौथा स्त्री का रक्त। क्रमशः इसका अर्थ होता है समस्त जगत का उपादान, बिंदु के संवर्धन से जन्म लेने वाला तत्व और चौथे का लोहित, तीसरे का नहीं इसमें बताया गया है। श्वेत और रक्त बिंदु उत्पादक शक्तियां हैं। चारों तत्वों के सम्मिलन से काम कला होती है जो सृष्टि की आधार पीठ है। इसलिए कुछ प्रमाणों में काम कला देवी को प्रधानता दी गई। यह कहा गया कि जब पहली बार स्त्री तत्व बिंदु में प्रवेश करता है तब नाद के साथ हर्थ कला नामक नवीन तत्व का उदय होता है। काम कला सर्वोच्च देवी है तथा हर्द कला नामक नवीन तत्व का उदय होता है। काम कला सर्वोच्च देवी है और सूर्य कोष्ठ में संयुक्त बिंदु उनका मुख है। चंद्र और अग्नि कोष्ठ में श्वेत और रक्त बिंदु उनके उरोज हैं तथा हर्द कला उनकी योनि। हर्द कला से ही सृष्टि होती है, अतः सृष्टि देवी करती है। सृष्टि करने के कारण उनकी स्थिति सर्वोपरि है तथा सभी देवता वर्ग में उनका उच्चस्त और विशिष्ट स्थान है। परा, ललिता, भटारिका और त्रिपुर सुंदरी की भी संज्ञा उन्हें दी गई, क्योंकि जगत का जितना सौंदर्य है उन्हीं के कर से है और वे संपूर्ण और पूर्ण अखंड सौंदर्य की निकेतन है। शिव का प्रतीक अ अक्षर माना गया और शक्ति का प्रतीक ह अक्षर। ह अर्धकला है जो योनि के आकार का अर्धभाग है। शिव के अ से जब इसकी संयुक्ता होती है तब काम कला और त्रिपुर सुंदरी का आरोपण होता है जो शिव और शक्ति दोनों तत्वों से संभाव्य है। इसलिए देवी अहम कही जाती हैं तथा उनके सभी कार्य और सर्जन अह से युक्त। जगत की समस्त आत्माएं त्रिपुर सुंदरी की ही रूप है। जब ये आत्माएं देवी चक्रों के साथ काम कला विद्या और ज्ञान का पूर्णतः आभास कर लेती हैं तब ये भी त्रिपुर सुंदरी हो जाती हैं। अ और ह वर्णमाला के प्रारंभिक और अंतिम अक्षर हैं तथा और सभी अक्षर इन्हीं दोनों के बीच में है। इस प्रकार समस्त तत्वों का विकास अहम रूपी त्रिपुर सुंदरी के माध्यम से होता है, इसलिए इसे परा कहा गया जो वाक के चार प्रकारों में प्रथम है। सृष्टि उसका फल है जिसमें स्त्री तत्व की प्रधानता है। त्रिपुर सुंदरी से तद्रूपता स्थापित करने वाले लोग अपने को भी स्त्री समझते हैं, अतः त्रिपुर सुंदरी ही ललिता है, श्री विद्या है और सौंदर्य एक आनंद का परम धाम है। शाक्त मत में तीन भाव और सात आचार निर्दिष्ट किए गए हैं। तीन भावों के अंतर्गत पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव है तथा चार आचारों के अंतर्गत वेदाचार, वैष्णवाचार्य, सर्वाचार्य, दक्षिणाचार्य, वामाचार्य, सिद्धांताचार्य और कौलाचार है। भाव का संबंध अंतस और मन से है तथा आचार का ब्रह्मा क्रियाकलाप से। भाव के माध्यम से भक्त दैत से अदैत की ओर प्रवृत्त होता है। वसु भाव अवध जीव की दैत भावपन्नता का परिचायक है। वीर भाव उस व्यक्ति की ओर इंगित करता है जो अज्ञान रूपी रज्जु को काटने में कुछ समर्थ होता है और अपने इष्ट देवता की सत्ता में अपना तादात्म्य कर देता है। शाक्तों के दो वर्ग है, कौलमार्गी और समयाचारी। पूर्ण रूप से अद्वैतवादी साधक कौल कहे जाते हैं जो करदम और चंदन में, शत्रु और पुत्र में, शमशान और भवन तथा कंचन और तीर्ण में कोई भेद नहीं समझते। समयाचारी शक्ति अंत साधना में अधिक समय व्यतीत करते हैं। दोनों वर्गों में महान अंतर है तथा दोनों एक दूसरे की निंदा करते हैं। कौल मार्गी पंचम कार की उपासना करते हैं जिनमें मध्य मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन में जो मां से प्रारंभ होता है इंद्रिय आनंद के लिए वे निब्ध आचरण करते हैं। तामस साधक और भौतिक आधार पर इनका अनुगमन करते हैं और क्षणिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। वस्तुतः पंचमकार के लाक्षणिक अर्थ है। मधु अथवा मध का अर्थ है सहस्त्र दल कमल से छरित होने वाली सुधा। मांस का अभिप्राय है पाप और पुण्य का नाश और हनन। शरीरस्थ ईड़ा और पिंगला में परिवर्तित प्रवाहित होने वाले श्वास और प्रश्वास की मत्स्य की संज्ञा दी गई है। असत संग के त्याग की स्थिति है मुद्रा। मैथुन का अभिप्राय है सहस्त्रार में स्थित शिव का तथा कुंडलिनी शक्ति का योग या सुषुम्ना नाड़ी में प्राणवायु का सम्मिलन जो असीम आनंद को उद्भूत करता है। इस प्रकार सतमार्ग पर चलने वाला सख्त साधक सही अर्थों में तंत्र का अधिकारी होता है और जितेंद्रिय रूप में उच्चतम कोटि का उपासना करता है। देवी की आराधना प्रायः तीन प्रकार से की जाती है। पहले प्रकार की आराधना में देवी की इस प्रकार साधना की जाती है कि वे महापद्मन में शिव के अंक में बैठी हुई हैं और उनका स्मरण आनंद उत्पन्न करता है तथा वे स्वयं आनंद से अभिन्न हैं। दूसरे अंक की आराधना में चक्र की पूजा की जाती है जिसे ब्रह्मा याग कहा जाता है। भूर्जपत्र रेशमी वस्त्र या स्वर्ण पत्र पर 9 योनियों का मंडल और उनके मध्य में एक योनि का चित्र अंकित करके चक्र बनाया जाता है जो संपूर्ण चक्र में श्री चक्र के नाम से ख्यात है। सख्त इस चक्र की दो प्रकार से पूजा करते हैं, एक जीवित स्त्री योनि के दूसरे काल्पनिक रूप की। इसलिए सख्तों की दो शाखाएं हो गई, एक कौल और दूसरे समयीन, जिनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। तीसरे प्रकार की आराधना में दार्शनिक धरातल पर ज्ञान के आधार पर देवी की उपासना की जाती है। देवी के ऐसे आराधक ही सच्चे और सुधि भक्त होते हैं। सख्त तंत्रों का संबंध अथर्ववेद के सौभाग्य कांड से भी स्थापित किया जाता है, किंतु वेदों से संबंधित उपनिषदों में भी सख्त तंत्रों के संदर्भ दर्शित होते हैं। सख्त उपनिषदों में कौल, त्रिपुरा, महोपनिषद, भावना उपनिषद, बहज, अरुणापनिषद, अद्वैत भावना, कालिका और तरोपनिषद प्रधान है। कुछ उपनिषदों का भाष्य भी लिखे गए। कौल, त्रिपुरा और महापनिषद पर भास्कर राय ने भी भाष्य लिखे थे तथा त्रिपुरा और भावना उपनिषद पर अप्यय दीक्षित ने। अतः शाक्य सिद्धांतों और ज्ञान तत्वों का मूल उपनिषदों में मिलता है। बाद में शक्ति तंत्र साहित्य का विकास हुआ। शारदा तिलक तंत्र, प्रपंच चार तंत्र, भाव चूड़ा मणि तंत्र ऐसे तंत्र ग्रंथ हैं जिनसे शक्ति तंत्र के दर्शन तत्व पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है।